नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या है 9। जहियासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्वन संति विद्वसः ऋते अजितात्मन उत्पते स्थितात् तद्धिनं तस्य महत्समर्हणम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया पीछे दोहराइए। जही त्याग दो, आसुरम आसुरी भावम प्रवृत्ति को, इमम इस, त्वम तुम मेरे पिता, आत्मनः अपने, समम बराबर, मनः मन, धत्स्व बनाओ, न नहीं, संति हैं, विद्विषः शत्रु, ऋते के अतिरिक्त, अजितात् अनियंत्रित, आत्मनः मन, उत्पथे अवांछित प्रवृत्तियों के कुमार्ग पर, स्थितात् स्थित होकर, तत ही वह प्रवृत्ति ही निसंदेह अनंतस्य असीम भगवान की, महत सर्वश्रेष्ठ समर्हणम पूजा विधि। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तात्पर्य, तब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को बस में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, मन चंचल उदंड जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ में इसे दमित कर माना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं और न शत्रु। पंडिता समदर्शिना, समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। इसे समझना ही भक्ति के राज में प्रवेश करने की पहली शर्त है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। इससे पहले कि भागवतम के श्लोक पर कुछ चर्चा करें, आज बक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है, उसके बारे में थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे, समाधि बुक से। श्रीवास ठाकुर के आंगन में एक बार चैतन्य महाप्रभु 72 घंटे तक नृत्य करते रहे और बक्रेश्वर पंडित जी 72 घंटे कीर्तन करते रहे और बक्रेश्वर पंडित 72 घंटे तक नृत्य करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर मेरे पास सिर्फ एक पंख है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे साथ दूसरा पंख होगा और मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। बक्रेश्वर पंडित जो हैं वो नृत्य में बहुत प्रवीण थे और महाप्रभु की नवदीप लीला में और बाद में जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने महाप्रभु के साथ संकीर्तन में भाग लिया। महाप्रभु जो हरिनाम को डिस्ट्रीब्यूट करने आए थे, उसमें जो है वो अपने खून मृदंग और अपने मेलोडियस जो है उसमें गीत के साथ आए थे, तो बकरेश्वर पंडित उनके साथ एक नृत्य के रूप में उनके साथ आए थे कि वो भी साथ साथ में नृत्य करेंगे। बकरेश्वर पंडित जो है उन्होंने देवानंद पंडित जिन्होंने कि एक वैष्णव अपराध किया था श्रीवास ठाकुर के प्रति, उनको अपनी कृपा से जो है उनको उस अपराध से मुक्त करवाया और तभी महाप्रभु ने जो है देवानंद पंडित को एक्सेप्ट किया। और महाप्रभु बकरेश्वर पंडित के बारे में कहा करते थे कि जो कृष्ण जो है उनके हृदय में डांस करते हैं, इसीलिए बकरेश्वर पंडित के पैर कभी रुकते नहीं हैं और वो भी डांस करते रहते हैं हमेशा। और कुछ जो महाप्रभु के कुछ एसोसिएट थे जैसे कि परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद पंडित और शंकर, रघुनाथ दास ठाकुर, क्योंकि ये सब और बकरेश्वर पंडित ये सब महाप्रभु के बहुत बिगिनिंग नवदीप से ही महाप्रभु के साथ रहते थे और जगन्नाथपुरी में भी महाप्रभु के साथ रहे जब तक महाप्रभु इस धराधाम पर उपस्थित थे। और उन्होंने जो है बकरेश्वर पंडित ने फेथफुली महाप्रभु को सर्व किया जब तक महाप्रभु जो है उस नीलाचल धाम में उपस्थित थे। और बकरेश्वर पंडित ने श्री राधाकांत विग्रह की स्थापना करी गंभीरा में जो जगन्नाथपुरी में, जो कि गंभीरा के साथ में और काशी मिश्र के घर में ही था। और कवि कर्णपुर बताते हैं कि जो बकरेश्वर पंडित हैं वो अनिरुद्ध के चतुर्व्यूह में जो अनिरुद्ध हैं उनके इनकार्नेशन हैं, अर्थात जो है उनके अवतार हैं। और बकरेश्वर पंडित के शिष्य थे गोपाल गुरु गोस्वामी और जो कि और उनके फिर शिष्य थे ध्यानचंद, और जो कि बताते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा उड़ीसा में जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया और उनके ज़्यादातर डिसाइपल जो हैं उड़ीसा में देखने को मिलता है। और श्री कृष्ण लीला में जो है ये बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या नाम की सखी है जो कि डांसर है, राधा रानी के और कृष्ण के लिए वो डांस करती हैं तुंग विद्या, तो वो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं और जो कि राधा रानी उनकी अष्ट सखियों को वो सर्व करती हैं। बकरेश्वर पंडित जी की समाधि जो है वो 64 समाधि एरिया वृंदावन में। श्री बकरेश्वर पंडित जी की, बकरेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है आप सबको जो प्रतिदिन आते हैं उनको शायद जानकारी होगी कि ये जो वार्तालाप हो रही है ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के बीच में, अर्थात पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो ये जो श्लोक हैं वो प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं। तो अजीब सा है कि 5 साल का छोटा बच्चा अपने पिता जो तीनों लोगों का स्वामी है उसको समझा रहा है। आप सोचिए जो तीनों लोगों का स्वामी होगा उसका उसका जो अहंकार होगा कितना ऊंचा होगा। तीनों लोग अर्थात कोई भी देवता जो है वो हर देवता मतलब उनके दरबार में आते थे और उनको प्रणाम करके जाते थे, ऐसी स्थिति थी उनकी। और उस व्यक्ति के जो है उस घर में एक छोटा 5 साल का बेटा उसकी बात नहीं मानता तो कितना उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा। बड़ी अजीब सी स्थिति थी, इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बावजूद भी जो हिरण्यकश्यपु प्रसन्न नहीं थे। क्यों प्रसन्न नहीं थे? इतना बड़ा ऐश्वर्य है, हम लोग ऐश्वर्य धन कमाते हैं या हम बहुत सारे ऐश्वर्य इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि इससे प्रसन्नता मिलेगी। जो भौतिक जीवन में जो लोग हैं वो इसीलिए तो ऐश्वर्य कमाते हैं कि बहुत पैसा आएगा, अच्छा घर होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी गाड़ियाँ होंगी, तो बहुत जो है खुशी मिलेगी। और हिरण्यकश्यपु के पास सब कुछ है, तीनों लोगों का, श्री राधा राधिका रमण की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हिरण्यकश्यपु के पास ये सब कुछ मौजूद है पहले से। और फिर भी वो व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको भोग नहीं रहा है, वो परेशान है। किस लिए? एक छोटे से बच्चे के लिए, 5 साल का बच्चा। 5 साल का बच्चा तो दिल्ली गवर्नमेंट अब सरकार ने परमिट किया को आप स्कूल जा सकता है, नहीं तो स्कूल भी नहीं जा सकता। अब अभी आप देखो 5 साल के बच्चे को स्कूल जाना भी अलाउ नहीं था। वो उस 5 साल के बच्चे से वो इतना चिढ़ा हुआ है, और वो बच्चा जो है अपने पिता को उपदेश दे रहा है और क्या कह रहे हैं, हे पिता आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं, आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं, अर्थात सबके प्रति समभाव रहिए, शत्रु और मित्र किसी को मत समझिए। तो ये व्यक्ति वही व्यक्ति समझ सकता है, शत्रु और मित्र नहीं समझेगा जिसने अपने मन को जीत लिया है, क्योंकि मन ही किसी को शत्रु समझता है और किसी को मित्र समझता है। शत्रु और मित्र जो है ये द्वंद्वात्मक स्थिति जो है ये माइंड की है, माइंड हमेशा द्वंद्व में रहता है, हर सुख दुख हानि लाभ यश अपयश मान अपमान ये किसको फील होता है, कौन फील करता है ये सब, माइंड जो है वो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इन चीजों से, और वही इन चीजों को फील भी करता है, उसे किसी को शत्रु मानता है किसी को मित्र मानता है। और तो वही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप इस तरह से ना लाएं, क्योंकि अनियंत्रित पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अनियंत्रित और पथभ्रष्ट मन, वो मन जो रास्ते से भटक गया है, पथभ्रष्ट का मतलब जो रास्ते से भटक गया है, तो इनडायरेक्टली हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं कि आपका मन रास्ते से भटक गया है, जो सही रास्ता है उससे, इसीलिए जो है वो आप शत्रु समझते हो, आपके अंदर संभाव नहीं है, आप किसी को मित्र समझते हो, किसी को अपना समझते हो, किसी को पराया समझते हो, तो कह रहे हैं ये भाव जो है वो आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ना नहीं करेंगे से क्या है कि जब तक व्यक्ति समानता के स्तर पर नहीं देखता है वह भगवान की ठीक से पूजा भी नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है कि जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनिश्चय स्वपाके छ पंडिता समदर्शिना, भगवद्गीता में कहा गया कि पंडित या विद्वान या भक्त वो है जो सबको समभाव से देखता है। समभाव से देखना और सम व्यवहार नहीं होगा उसमें, सम कई बार हम तो समभाव का मतलब है कि साथ सबके साथ समान व्यवहार करना, नहीं, व्यवहार में पर जो है वो भेद होगा, क्योंकि कोई हाथी है उसमें भी भगवान है, तो आप हाथी के साथ वही व्यवहार नहीं करेंगे जो एक व्यक्ति के साथ करेंगे, तो व्यवहार में भिन्नताएं होंगी, पर तब भी उसको भगवान का एक अंश समझना है। तो ये व्यवहार में भेद होगा परंतु समझ में अंडरस्टैंडिंग में इसमें भेद नहीं होगा, वो भी भगवान का अंश है और दूसरा जीव भी भगवान का अंश है। और यही बात कर रहा हूँ, प्रभुपाद ने अपने परपट में भी, छोटा सा परपट है, प्रभुपाद ने यही लिखा है कि मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, पूरे परपट में प्रभुपाद ने यही लिखा है। और छठवें अध्याय के 34वें श्लोक को कोट करते हुए लिखते हैं, ये मन की का करैक्टर बताते हैं कि मन किस तरह का होता है, चंचल बलवान जिद्दी और वायु के समान जो है वो तीव्र है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कैसे जो है वो नियंत्रण में किया जा सकता है। ये भाषा कि अर्जुन जो है ये बात भगवान से कह रहे हैं कि मन का तो ऐसे ऐसा करैक्टर है, तो उसको हम कैसे अपने बस में कर पाएंगे, ऐसे मन कैसे बस में होगा। तो भगवान इसके अगले श्लोक में इसके नियंत्रित करने के उपाय भी बताते हैं। आप छठवें अध्याय का जब 34वां श्लोक में ही है, तो छठवें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान इसका उपाय भी बताते हैं कि हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे नित्य कौनते वैराग्य ने चगृहते, भगवान दो उपाय बताते हैं। और पहले तो अर्जुन के बाद से अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल है मन को नियंत्रित करना, परंतु कह रहे हैं कि दो उपाय हैं इसके, कंस्टेंट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, कंस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि अगर हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे और कंटिन्यूसली इस दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और साथ में जो सांसारिक चीज़ें हैं उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे, डिटैचमेंट रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम इस मन को जीत सकते हैं। तो ये भगवान दो उपाय बताते हैं। हालांकि हमारे सारे डिवोटी इस मन कंट्रोल पर बहुत बड़े सारे सेमिनार दे चुके हैं, 4 डे 5 6 डेज, तो उनके के लिए मन कंट्रोल के बारे में बताना, पर इसमें चूंकि सब्जेक्ट ही यही है और प्रभुपाद भी परपट में ही बता रहे हैं, तो थोड़े से और चर्चा करेंगे इसमें कि किस तरह से जो है वो मन को नियंत्रित किया जा सकता है और दूसरे शास्त्रों में किस तरह से मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए गए हैं। क्योंकि जो मन है वो सबसे, हम माला करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होता है ये मन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, माला करने का उद्देश्य क्या है? मन की शुद्धता या मन को नियंत्रित करने के लिए। जैसे हम फास्टिंग करते हैं या कुछ और मनाते हैं, मतलब मान लीजिए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक तपस्या, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। पर माला करते हैं हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, और शास्त्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं किस लिए? बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। तो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो इसमें केवल यही बात बता रहे हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करना है, और बहुत सारे नियंत्रण करने के उपाय जो हैं दूसरे दूसरे शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। तो मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा आपको बताऊँ कि दूसरे, जैसे मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, बहुत सारे जो धर्मशास्त्र हैं, कि ऐसा नहीं है कि भगवद गीता में मन के बारे में लिखा गया और मन के बारे में बताया गया है, और भी जो दूसरे शास्त्र हैं उसमें भी मन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और मन को कंट्रोल करने का जो है उपाय बताए गए हैं। क्योंकि मन को और वचन को एक करना ही साधना है, माइंड को और स्पीच को एक साथ मिलाना ही साधना है, अर्थात जो मन में आता है वही वचन में आना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मनाम। मन वचन और कर्म जिसका एक है वही महात्मा है, जिसके मन में जो चीज है विचार चल रहा है वही उसके वाणी में आ रहा है और वही उसके कर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो महात्मा है। मनस एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मनाम। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मस अन्यत दुरात्मनाम। ये दुरात्मा का लक्षण क्या है? वो मन में कुछ और सोचता है, वो बोलता कुछ और है, और काम कुछ और करता है। तो ये दुरात्मा के लक्षण बताएंगे। तो मन मन का मतलब है, और हमारी सारी साधना यही है कि मन के और वचन को एक करना है, कि हम जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो अगर शुद्ध हो जाएगा तो हम वाणी से भी वही चीजें जो हैं वो प्रकट होंगी। तो ये मन की स्वच्छता के लिए जो है वो चार तरह की सीढ़ियां बताई गई हैं शास्त्रों में। वैसे मन को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बट चार सीढ़ियां का मतलब है सत्य को स्वीकार करना, सत्य में जीना, अर्थात जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसी में जीना, सत्य को स्वीकार करना, संसार के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। अगर कोई सीरियस डिवोटी है, साधक है, तो उसको ये सब निश्चित रूप से करना चाहिए। आचरण की पवित्रता, उसकी जो आचरण है उसको पवित्र होना चाहिए, उसको हमेशा अपने उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं किस तरह के आचरण कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसका आचरण पवित्र नहीं होगा तो वो सीधा सीधा जो है वो माइंड से उसका रिलेशन होता है, और है अपने पिछले पापों के लिए क्षमा पूर्वक भगवान से क्षमा के लिए प्रार्थना करना, बार बार भगवान से जो है हम क्षमा के लिए प्रार्थना करें तो मेरे पिछले पापों के लिए और पिछले कार्यों के लिए, पिछले एक्शन के लिए मुझे क्षमा कर दें। तो ये चार कार्य जो है बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, सत्य को स्वीकार करना, संसार के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, आचरण की पवित्रता, और पापों से पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करना। तो बताया गया है कि इससे जो है हमारा मन धीरे धीरे जो है, अगर हम प्रतिदिन इस तरह से करते हैं तो हमारा मन जो है वो नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो सफ़ेद कपड़े की तरह है, आप इसको जिस रंग में डुबोएंगे ये उसी रंग का हो जाएगा। तो हम जिस तरह की संगति करते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो चीज़ें उस व्यक्ति की हमारे अंदर आ जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा, मेरे अंदर कुछ नहीं होता, मैं तो उनके पास सिर्फ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, तो धीरे धीरे क्या है कि वो चीज़ें हैं उस व्यक्ति का जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ने लगता है, और आपकी बुद्धि जो है उसी रूप में उसी दिशा में काम करने लगती है। एक नेगेटिव व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी नेगेटिव बना देता है। अगर आप बार बार उससे बात करेंगे, बार बार उससे बात करेंगे, तो आपके अंदर भी वही नकारात्मक भाव आएगा जो उस व्यक्ति के अंदर था। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने भक्ति को बचाने के लिए जो है ऐसे लोगों से कम संबंध रखना चाहिए जिनका भक्ति से मतलब नहीं है, या व्यक्ति नकारात्मक है भक्ति के प्रति, या भक्तों के प्रति नकारात्मक है। क्योंकि आप देखेंगे जो MCD है वो सड़कों के ऊपर जब छोटे छोटे पौधे लगाती है तो उसको क्या करती है? लोहे का जाल लगा देती है दिल्ली में, देखा कि नहीं आपने? हर क्यों लगाते हैं वो? उसको बचाने के लिए। पर बड़े पौधे जब ये बड़ा हो जाता है पेड़, तो उसको लगाते हैं कभी? तो जब पौधा छोटा होता है तो बहुत सारे बचाने की आवश्यकता होती है, कहीं गाय से, बच्चों से, किसी भी तरह से नुकसान से, तभी वो लोहे का जाल लगा देते हैं। तो जब भक्ति हमारी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो हमें सब कुछ से बच के रहना चाहिए। प्रभु जी इसके लिए भी मना करते हैं, उसके लिए भी मना करते हैं, उसके लिए भी मना करते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो भक्ति में, इसीलिए मना करते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी नहीं मना किया जाएगा, फिर आप खेलो। इस पेड़ के कई टहनियां भी काट दी जाएंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये पेड़ ऐसे ही रहेगा एज इट इज। बस छोटे पेड़ की जब टहनी कोई हाथ से भी तोड़ देगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति को बचाने के लिए हमेशा भक्तों को हिदायत दी जाती है कि आपको इस तरह से भक्ति करनी है, इस तरह से भक्ति करनी है। और ये ऐसा नहीं कि भक्त अपनी मर्जी से करते हैं, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अब उसमें ये उपाय बताए कि भक्ति को अपने भक्त कैसे बचाना है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में और जो दूसरे सनातन गोस्वामी की बुक है उसमें दोनों में ये चीज़ें बताई गई हैं कि भक्ति को कैसे बचा के रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें करने के लिए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए जो है हमेशा उसको भगवान की तरफ लेके जाना चाहिए या आध्यात्मिक विचारों का अंकुश लगाना चाहिए उसके ऊपर। और आध्यात्मिक विचारों का अंकुश तभी लग पाएगा जब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, जब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। क्योंकि मन इतना स्ट्रांग हुआ है कि बुद्धि की बात, हालांकि बुद्धि की स्थिति जो है मन से ऊंची है, पर फिर भी मन अपना चलाता है, बुद्धि की चलने नहीं देता। जैसे घर में पिता होता है, मान लीजिए उसने सारे एम्पायर उसने एस्टैब्लिश किया, अब बेटा 25 साल का हो गया, अगर आप घर बैठो मैं चला लूंगा सारी बिजनेस, और जबरदस्ती जो है बाप के उस पर जाके बैठ जाता है कुर्सी पर। तो यही हालत मन की भी यही है कि मन जो है वो धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, क्योंकि मन स्ट्रांग होता है बाहर के वातावरण से। हम जितने सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, चीज़ों को इकट्ठे करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा मन जो है बहुत जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा, जो है इंद्रिय विषय के प्रति, इंद्रियों के प्रति, और मतलब इंद्रिय सुख के प्रति जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर फिर बाद में हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज टू इग्नोर इट्स डिमांड्स, कि सबसे अच्छा तरीका है मन को नियंत्रित करने का कि आप इसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति मत करो, नेगेट करो। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि रोज सुबह इसको 100 जूते मारो और रोज शाम को 100 झाड़ू मारो। 100 जूते मारना है, 100 झाड़ू, आप कहोगे मैं मुंह पे मार दूं जूते, ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि बार 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 उसी चीज़ों को सुनना है, उसी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, उसी चीज़ों को दोहराना है, ताकि आपके माइंड में ये बात समझ में आ जाए। माइंड को वही बातें बार बार देनी है, मेरे को करना है, मेरे को कुछ करना है, करना है, करना है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये अब छोड़ेगा नहीं। मान लीजिए आपको अगर मुझे साधना करनी है, करनी है, करनी है, सुबह करनी है, तो फिर आप थोड़े टाइम के बाद क्या है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि व्यक्ति मानेगा नहीं, तो फिर आपको कहेगा जल्दी साधना कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी उठ, देर हो गई, आप समझ लो। फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसे कहना शुरू कर देगा, मंगल आरती नहीं गया, क्लास में नहीं जा रहा, आप समझ लो, धीरे धीरे कहना शुरू कर देगा आपको। तो ये इसका स्वभाव है एक्चुअली में, कि हम धीरे धीरे जो है इसको कैसे आपको अपने उसमें लाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम मन को स्वतंत्र छोड़ेंगे, वो अपने अलग अलग तरह से संकल्प और विकल्प करने लगेगा, नाना तरह के संकल्प और विकल्प करता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि आध्यात्मिक विचारों से उसको अंकुश लगाना होता है। अंकुश, आप समझते हो अंकुश क्या होता है? हाथी को चलाने का छोटा सा लोहे का एक डंडा होता है, जिसमें एक कील जैसे ऐसे घुमा होता है, वो हाथी को उसी से चलाते हैं, उसी अंकुश से। अगर हाथी को ऐसे जहाँ बोलेंगे हाथी को चलाने के, वो वैसे चलता है वो, क्योंकि ऊपर जो महावत बैठा है उसके पास वो अंकुश होता है हाथी को चलाने के, तो वो अंकुश होता है। तो ये कह रहे हैं कि उस मन को उसी तरह से नियंत्रित करने के लिए आपके पास आध्यात्मिक विचारों का अंकुश होना चाहिए, जिससे आप उस मन को नियंत्रित कर सको। तो और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हमें हमेशा नॉलेज में रहना पड़ेगा कि ये मेरे मन की डिमांड है, ये मेरे मन की डिमांड है, ये मेरा मन ऐसे मांगता है, मेरे मन में ये बातें उठ रही है, मैं अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ। इस नॉलेज में हमेशा रहना पड़ेगा, तभी हम जो है इस माइंड से अलग रह पाएंगे। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है उसके बारे में कि हमें माइंड के लिए जो जो तपस्याएं भगवान ने बताई हैं या भागवत गीता में और दूसरे शास्त्रों में डिस्कस किया गया है, उसको हमें जो है वो दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। तो मन की कौन कौन सी तपस्याएं बताई गई शास्त्रों में बताइए। भगवान ने 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मन की तपस्या बताई है। संतोष, सिंप्लिसिटी, सरलता, गंभीरता, गंभीरता का मतलब विचारों में गंभीरता, संतुष्टि का मतलब है हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है हम अपनी मेहनत करने से जितना सब कुछ हमें प्राप्त होता है उसको लेके हम संतुष्ट हो जाएं, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मुझे भगवान ने जितना दिया है वो मेरे लिए उसी में मुझे भगवान जो है गुजारा करना है और मेरा जीवन इतने में चल जाना चाहिए, नहीं तो हम कभी संतुष्ट रहेंगे नहीं। और ये प्रॉब्लम जो है वो भक्तों के समाज में बहुत आती है, भक्ति करते हैं मान लीजिए बाहर रहते हैं लोग बिजनेस करते हैं इतने बड़े बड़े नौकरियां करते हैं उनको लगता है कि और कितना कमा लें और कितना कमा लें, इतना पैसा हो गया उनके पास कि उनकी पूरी जिंदगी उनके बेटे की भी जिंदगी निकल जाएगी, तब भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती है कि मैं भक्ति कर लूँ ठीक से, उसको लगता है कि मैं क्यों छोड़ दूँ मैं बड़े आराम से कमा रहा हूँ। और ना उन पैसा जो है वो उस लक्ष्मी को भगवान की या लक्ष्मीपति की सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर लक्ष्मी आ रही है और आसानी से आ रही है तो उसको भगवान की या भक्तों की सेवा में लगाएं। पैसा का सही उपयोग वही है, धन की तीन ही गतियां होती है आपको मालूम है, धन की तीन गति है दान भोग या नाश, शास्त्र कहता है या तो उस धन का आप दान कर लीजिए या भोग कर लीजिए या नाश हो जाएगा। और ये एक साथ में कई शास्त्रों में लिखा, मैं कल भी एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें जो है उस पुराण में भी इस तरह से लिखा हुआ था कि केवल तीन गति है जो धन की, या तो खूब दान कर लो या खूब भोग कर लो या नाश हो जाएगा, तीसरी गति है उसका कि नाश हो जाएगा, आपके पास रहेगा नहीं और कोई और ले जाएगा उसको। तो हमें भी समझ जाना चाहिए कम से कम जो भक्ति के लिए उसमें है उनको तो समझ ही जाना चाहिए कि मुझे किस तरह से जो है इस पैसे का यूज करना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि साधारण रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें साधारण बन के रहना, मैं किसी के पास बहुत पैसे हैं और वो साधारण बन के रहेगा ये संभव नहीं है, वो दिखावा करेगा ही करेगा, ये संसार दिखावे का है, इस कलयुग में हर व्यक्ति दिखावा करता है। अगर उसकी औकात 500 रुपये के मोबाइल खरीदने का है तो 5000 का मोबाइल खरीदता है ताकि लोगों को पता चले कि मैं बहुत अमीर हूँ, उसकी औकात 1000 रुपये के कपड़े पहनने की है तो 10000 रुपये का सूट पहनता है, क्योंकि दिखाता है लोगों को कि मैं मुझे वो अपनी पहचान उन कपड़ों से करना चाहता है, अपनी पहचान उस मोबाइल से करवाना चाहता है क्योंकि अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, अंदर वो डब्बा है बिल्कुल। तो किस लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है कपड़ों से, लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है अपने मोबाइल से, लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है अपने कपड़ों से, अपने गाड़ी से, अपने दूसरे चीज़ों से इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि अब अंदर में कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है आपको कोई ठीक से बात करना नहीं आता उसको, परंतु आप देखोगे उसके पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों से लोगों को आकर्षित करना चाहता है। ये बीमारी इस भौतिक जगत में सबके पास है, कुछ लोगों को छोड़कर जिनको भक्ति समझ में आ गई है, इवन जो भी लोग कथा करते हैं या चीजें करते हैं या भक्ति करते हैं उनमें दिखावा बहुत होता है, उनको ये नहीं समझ में आया कि दिखावा करने से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खुद ही अपनी आत्मा का हनन करते हैं, हम अपना खुद ही का नुकसान करते हैं। तो ये जो है ये भक्तों के अंदर भी ये बात चली जानी चाहिए बहुत से बड़े अर्थ में क्या बोलते हैं दृढ़तापूर्वक कि मेरा इससे नुकसान होने वाला है। आप कई बार क्या होता है भक्त सेटल हो जाते हैं अपनी भक्ति से, उसको जैसी भक्ति करता है उसको लगता है ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, भक्ति भी ठीक चल रही है, घर भी ठीक चल रहा है, वो भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है मैनेज होता, तो वो धीरे धीरे क्या होगा उसका नुकसान होता है और एक दिन जो है वो बाहर चला जाता है, क्योंकि भक्त दो तीसरी लाइन नहीं है भक्ति में, या तो आप आगे जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, न्यूट्रल पोजीशन नहीं होता भक्ति में कि मैं जैसा हूं वैसा मेंटेन कर लूंगा या मैं मेंटेन कर लूंगी, नहीं न्यूट्रल पोजीशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कम्युनिस्टों के सिद्धांत में है कि या तो वो व्यक्ति मेरा फ्रेंड है या मेरा दुश्मन है, वो तीसरे व्यक्ति को मानते नहीं कम्युनिस्ट लोग, कि न्यूट्रल व्यक्ति को मानते नहीं है, वो कहते हैं वो हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, दैट्स ऑल। पर दो ही तरह के लोग मानते हैं। उसी तरह से भक्ति में भी ऐसे ही होता है, या आप आगे ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। ये संभव नहीं है कि मैं जैसा है वैसे ही चल रहा हूं, मैं इतने साल से वैसे ही चल रहा, नहीं आप बहुत नीचे जा चुके हो। हमें लगता है कि हमने प्रगति कर लिया, इतने और पुराने हो गए तो और प्रगति होगी, नहीं प्रगति हुई। वो प्रगति जो है वो आप अगर किसी के अंदर है तो उस व्यक्ति को पता लग जाता कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो हमें इनको समझना चाहिए कि हम जो है वो भक्ति में कहीं इस तरह की चीजें तो नहीं कर रहे जो अपने माइंड, इससे क्या होता है माइंड और जिद्दी बन जाता है। आप जैसे इसके डिमांड को पूरी करते हो हमारा मन और जिद्दी होता चला जाता है और स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिर इसको जैसे कि अर्जुन कह रहे हैं कि उसको जो कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने के समान है, जो कि संभव नहीं है। एक दूसरे धर्म शास्त्र में मन को तीन तरह का बताया गया है, एक पहाड़ जैसा अडिग जो कि भक्तों और संतों का माइंड होता है, अगर वो एडवांस्ड डिवोटी है तो कि कुछ भी हो जाए कैसी भी परिस्थितियां आ जाए उसका माइंड अडिग नहीं होता, मतलब वो भक्ति को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जो भी परिस्थितियां आएंगी वो बना रहेगा। उसको खाने को मिल रहा तब भी, नहीं मिल रहा तब भी, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आ रही है जो उसको बनाएगा पहाड़ जैसा अडिग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता पहाड़ को कैसा भी तूफान आ जाए। एक दूसरे तरह का माइंड बताया गया है पेड़ जैसा, कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो भक्ति होती है वो स्थिर होती है, बहुत सालों से टिका हुआ है, बट हवा की तरह जैसी झोंका आता है तेज तो हिलने लगता है बहुत, पता था डालियां भी हिलती हैं फिर तेज तेज झोंका, तो उसको भी कई बार घर में प्रॉब्लम आ जाएगी, भक्ति में प्रॉब्लम आ जाएगी, जहाँ रहता है वहाँ समस्याएँ आ जाएंगी, तो वो हिलने लगता है मैं ठीक जगह पर हूँ कि नहीं हूँ, उसको खुद पर डाउट होने लगता है। तो एक इस तरह की कैटेगरी का भक्त होता है। और तीसरे कटक है वो बताया गया है वो तिनके के समान होता है, तिनके के समान जहाँ हवा ले जाएगी वहाँ चला जाएगा, अर्थात जिसने कुछ बोल दिया राम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो जहाँ जिसने भी बोल दिया उसी की तरफ हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो, मंदिर में ऐसे ही होता है, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ और बोलते आप ठीक कह रहे थे उसकी तरफ हो जाएगा। तो ये तीसरी कैटेगरी का भक्त होता है, मैं माइंड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि हमारा मन जो है वो हमेशा उद्विग्न रहता है, एजिटेटेड रहता है। जिस जो व्यक्ति जो भक्त जिसके अंदर में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी कामना है, वो चाहे भक्त भी है, उसका माइंड हमेशा उत्तेजित रहता है, उत्तेजित रहेगा। उसमें जो है वो रजो चंचलता ज़्यादा होती है, रजोगुण बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि शास्त्र कहता है कि अभी वो व्यक्ति जो है वो भक्ति के उस द्वार तक पहुंचा नहीं है, अभी वो बाहर बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसके माइंड में अभी बहुत एजिटेशन चल रहा है, बहुत उत्तेजना है, अभी छोटी सी बात को लेकर उत्तेजित हो जाता है, छोटी सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, किसी का छोटा सा बिहेवियर उसको उत्तेजित कर देता है, वो परेशान हो जाता है, हो सकता है ना बोले, हो सकता है रिएक्शन ना करे, पर बहुत खुद बहुत परेशान हो जाता है। पर फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कम से कम नहीं बोलता है तब भी उसकी स्थिति अच्छी है, कि कम से कम अपने वाणी से उस चीज को नहीं निकालता। तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान का चिंतन करना ही मन का भजन है, कि हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, यही मन का भजन है। नाम का गुणगान करना वाणी का भजन है, हम जो है वाणी का चैंटिंग करते हैं ये वाणी का भजन है, हम बार बार जो है जप करते हैं तो इससे वाणी हम भी हमारी शुद्ध होती है। और शरीर का भजन क्या है, जीव की सेवा करना, जीव सेवा शरीर का भजन है, नाम का गुणगान वाणी का भजन है, और भगवान का चिंतन मन का भजन है। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम इस तरह की चीजें हम कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति जिसका माइंड एजिटेटेड होता है, उत्तेजित होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसके मन में तीन तरह की स्पृहा हमेशा होती है, और मन में किसी के मन में भी होता है वैसे तो, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं डिवोटी की बात भी कर रहा हूँ, कि उसका माइंड भी अगर एजिटेटेड है तो उसके अंदर ये तीन तरह की स्पृहा होती है बहुत ज़्यादा, तब उसे चेक करना चाहिए। वो तीन तरह की स्पृहा क्या है, भोगने की, बोलने की और देखने की। कहीं भी कैसे भी मौका मिलेगा भोग लेगा, मतलब कुछ भी कोई वस्तु भी हो चाहे, और जैसे तो शास्त्र कहता है कि कोई चीज़ को भोगने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं इसको अकेले भोग कर रहा हूं या मैं ऐसे कर रहा हूं या मैं छुप के कर रहा हूं या मैं पीठ पीछे कर रहा हूं, ये सब कोई दिख नहीं रहा, तो भगवान जरूर देख रहे हैं वहां, और भगवान के अलावा 12 लोग और देख रहे होते हैं, अर्थात 26 आंखें तब भी हमें घूर रही होती है कि हम क्या काम करते हैं। तो बहुत ध्यान पर देना चाहिए इन चीजों पर, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति काली रात में काली चट्टान पर चलते हुए काली चींटी के पदचाप को भी 26 लोग देख रहे होते हैं कि चींटी क्या कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हर व्यक्ति के ऊपर कितने लोग नजर रखते हैं, अर्थात 26 आंखें तब भी आपको घूर रही होती हैं। ये परमात्मा के अलावा 12 लोग हैं जो आपको घूर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। तो भोगने से पहले या भोगते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतने लोग जो है, इतने लोग भगवान मुझे देख रहे हैं। और बोलने से पहले, कई बार भक्तों में बहुत बोलने की होती है, तो बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मैं सत्य की हत्या तो नहीं कर रहा, क्या मेरे बोलने से सच जो है, मैं सच को कहीं खत्म तो नहीं कर रहा हूं। तो कई बार जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, सच जो है वो बहुत कम है संसार में, सच ज्यादा है ही नहीं। तो सत्यवादी लोगों के लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो बोले जो सब, तो हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कहीं सच की हत्या तो नहीं कर रहा, कि मेरे से सच की हत्या तो नहीं हो रही है। कलयुग में सच बोलना भी बहुत बड़ी तपस्या है, कोई अपने जीवन भर सच भी बोल लेता है तो देवताओं के 10,000 वर्ष तक उस स्वर्ग में रह सकता है, केवल सच बोलने से। कोई तपस्या नहीं, कोई माला नहीं करनी है, कोई प्रणाम नहीं करना है भगवान को, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल सच बोलता है अगर व्यक्ति तो देवताओं के 10,000 वर्ष तक वो भगवान उसमें देवलोक में रह सकता है, और उसके बाद भी उसको बहुत अच्छा जन्म प्राप्त होता है। तो कलयुग में सच बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत टफ है एक्चुअली में। मोस्टली डिवोटी भी बहुत झूठ बोलते हैं, हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, कहां जा रहे हो प्रभु, कहीं नहीं जा रहा, अभी आपको 2 मिनट में फोन करता हूं, 2 घंटा भी नहीं बीत जाता है, वो 2 मिनट का क्या है, कितना बड़ा झूठ है, बस अभी आया 5 मिनट में, वो अभी 5 मिनट आता नहीं है कभी, ये झूठ है। यही झूठ हमें बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए जो है वो एक काबिल बनाती है कि हम बड़े बड़े झूठ बोले। फिर आप सब राम राम घर में भी देखते हैं, मम्मी कहां जा रहे हो, कहीं नहीं जा रही, आपको मालूम है आप कहीं जा रहे हो लेकिन बच्चों बच्चे को नहीं बताना चाहते। तो क्या ये धीरे, मैंने हम अपने यहां पर एक बार एक क्लास में जो है ये एक्सरसाइज करवाई थी 7 दिनों तक, कि हर व्यक्ति केवल सच बोलेगा और उसके क्या परिणाम आएगा आप सोच नहीं सकते, इतना ट्रेमेंडस था कि लोग परेशान हो गए थे, सब हालत खराब हो गई थी सबकी। 7 दिन तक केवल सच बोलना है, और जब उनके हस्बैंड को या दूसरे लोगों को या वाइफ को पता लगा तो सब पूछे तेरे पास कितने पैसे हैं बता, क्या छुपा के रखा हुआ है। अब एक दो माता जी कह रहे प्रभु जी ऐसे ऐसे पूछते हैं, मैंने कहा बोलो 1 सप्ताह बाद बताऊंगी। आप कैसे कर सकते, आप बचने का उपाय भी बताना है उनको, वो बताना नहीं चाहती। और तीसरा है देखने की भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो स्पृहा होती है, तो किसी चीज को स्त्री को देखते हुए या पुरुष को देखते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखें कहीं मेरी साधुता नष्ट तो नहीं हो रही है, इसको देखने से कहीं मेरी साधुता दूषित तो नहीं हो रही है। अगर हम इस बात का बार बार ध्यान रखेंगे तो हम जो है हम दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। इन तीनों स्पृहा को अगर हम रोक पाएंगे, इसका सीधा संबंध मन से, क्योंकि ये सारे काम मन करता है, मन ये फीडिंग देगा आपको, चल देखते हैं क्या समस्या है, कोई नहीं देख रहा, हम कितने अच्छे भक्त हैं ये पता चलता है कि जब आसपास कोई व्यक्ति ना हो, जब आसपास कोई देखने वाला ना हो फिजिकल रूप में। देखने वाले तो हैं 13 लोग, 26 आंखें, बट उनके अलावा मुझे लगता है कि कोई फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं है, तब पता लगेगा हम किस तरह के भक्त हैं। ज्यादातर क्या है, समस्याएं अब बढ़ती जा रही हैं कि हमारे यहां भी, मैं कुछ पीछे विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमारे यहां भी जो ऐसे नकली भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो ऊपर से तो भक्त हैं और उनके जो आचरण में चरित्र में जो है वो भक्ति नहीं है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है किसी संस्था के लिए भी और अपनी भक्ति के लिए तो है ही है, उस संस्था के लिए भी बहुत खतरनाक है कि आगे चल के कहां तक पहुंचेगा। क्योंकि आपका अगर एक्शन, आपका आपके जो कार्य हैं वो ठीक नहीं है, आपका आचरण ठीक नहीं है, तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बताएंगे लोगों को, उसको अपील नहीं करेगा ये, क्योंकि लोग देखते हैं कि आप क्या करते हो, ये करने वाला खुद क्या करता है, इस बात को ज्यादा देखते हैं। किताबों में क्या लिखा है, मैं यहां से कितना बड़ा उपदेश दे रहा हूं, इसको कोई नहीं सुनता। इस बात को हर व्यक्ति देखता है कि ये खुद क्या करता है। तो हमें इस चीज को अगर हम नॉलेज में रखेंगे तो धीरे धीरे हम इन चीजों से जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, पर फिर भी कई बार जो है मन के दोष, मन की चंचलता, विषयों में आसक्ति आदि कम नहीं हो रहा हो, हमें लग रहा है कि मेरी मन की चंचलता कम नहीं हो रही है, मेरे मन का दोष कम नहीं हो रहा, विषयों में आसक्ति कम नहीं हो रही है, तो निराश नहीं होना चाहिए, भजन को और दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये भजन ऐसा है कि एक दिन आपको इस चीज से मुक्ति दिला देगा। तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो है मुझे इस चीज से मुक्ति दिला देंगे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कई सारे मन के ऊपर जो है उसमें हमेशा मन का एक स्थिति यह है कि हमेशा आउट ऑफ ट्रैक होता है, वो मन जो है वो हमेशा असंतुष्ट रहने के बहाने ढूंढता है, डिससेटिस्फाइड, ये मन का एक लक्षण है। वो आप कैसे ही परिस्थिति में हो, कितने अच्छी जगह पर हो, आपको वो ढूंढता रहेगा कि किस चीज से मैं असंतुष्ट हो जाऊं, वो ढूंढता रहता कि मैं असंतुष्ट होना है मुझे। तो हमें इन चीजों से सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। एक जगह पर और बताया गया है कि भक्तों को जो है वो मुर्दा मन वाला नहीं होना चाहिए। मुर्दा मन का मतलब है नास्तिकों का मन, जो भगवान को मानता ही नहीं। केवल हम आते हैं, ठीक है भक्त लोग कह रहे हैं तो भगवान को मानते हैं, प्रणाम भी कर लेते हैं, पर हम अंदर से मानते नहीं सचमुच कि ऐसा होता होगा, इसको बोलते हैं मुर्दा मन। एक होता है रोगी मन। रोगी मन क्या करता है, हमेशा अगर स्त्री है तो पुरुष को और पुरुष है तो स्त्री को, हमेशा वो इसी यही देखता रहता है, लोगों में जो है वो दोष को ढूंढता है, ये भी तो गलती करता है, ये भी तो गलती करता है, इसमें भी तो चीजें हैं, इसको बोलते हैं जो है वो रोगी मन है। ये पापी व्यक्तियों का ज्यादातर होता है, हम सब में रोग ढूंढता है, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। तो हमें रोगी मन वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक होता है अचेत मन। अचेत मन का मतलब है उसको केवल अपने खाने से मतलब है, तो अपनी फैसिलिटी से मतलब है, बाकी कुछ नहीं मतलब नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, मतलब अवेयर नहीं है स्थिति से कि मैं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। तो और दूसरा मन, एक मन बोलते हैं उल्टा मन, जो उल्टी काम करता है हमेशा, आप बताओगे कुछ वो करेगा कुछ। वैसे उल्टा मन शास्त्र में बताया गया है जो ब्याज खाता है, मतलब हम जो है वो गरीब लोगों को या मजबूर लोगों को पैसे देकर उसका ब्याज जो आता है वो उसको उसी से अपना जीवन चलाता है, तो उसको बोलते हैं उल्टा मन वाला व्यक्ति। या उसको जो है वो अभी के संदर्भ में लिया जाता है कि जो है वो भक्ति से उल्टा काम करेगा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको छोड़ करके वो प्रतिकूल कामों को करता है, तो इसको बोलते हैं उल्टा मन वाला। और हम देखते हैं कई बार जो है वो फिर उसमें ब्रह्मचारियों के लिए माइंड कंट्रोल का भागवतम में श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है 4.26 के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मचारियों का अपना माइंड कैसे कंट्रोल करना चाहिए, पूरा परपट इसी के ऊपर लिखा है प्रभुपाद ने 4.26। तो इस तरह से हम जैसे इसमें, और एक तो है कि मानसिक पाप से बचना चाहिए। मानसिक पाप क्या है, तभी ये मन हमारा शुद्ध होगा। मानसिक पाप क्या है, दूसरे के धन की इच्छा करना कि दूसरा व्यक्ति मुझे अपना का धन दे दे, या मैं उसका पैसे किसी तरह से मार लूं, या किसी ऐसा जुगाड़ बना दूं कि मेरे को पैसे दे दे मैं ऐसे कर लूं, तो ये होता है दूसरे के धन प्राप्त करने की लिप्सा। तो ये मानसिक पाप है, दूसरों को अनिष्ट करने की इच्छा, अर्थात दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा किसी न किसी रूप में। और तीसरा है सत्य, अहिंसा, दया, दान में अश्रद्धा दिखाना। ये तीन जो है मानसिक पाप कहे गए हैं, दूसरों के धन की इच्छा करना, दूसरों को अनिष्ट करने की इच्छा करना, सत्य, अहिंसा, दया और दान में अश्रद्धा दिखाना। अर्थात उसकी इन चीजों में श्रद्धा नहीं है, न सत्य बोलने में, न हिंसा में, न दया में, न दान में। कई बार सांसारिक लोगों को आप कोई दान करने के लिए भी बोले तो उसको लगता है बहुत चिढ़ता है, भक्तों से भी जब देखो तब मांगने आ जाते हो, भाई कृपा करने आ रहे हैं भक्त, भक्त उसको कृपा नहीं समझता, चिढ़ता है फिर भक्तों से। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, दो मिनट और लूंगा। प्रभुपाद जी ने जो है कुछ उपाय बताए हैं कि हम मन को और कैसे निग्रह कर सकते हैं, कि एक अब हमें मन को है सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। जहां भी हमारे लगे कि इंद्र तृप्ति के हो सकते हैं होगा तो वहां अपने आप को वहां से दूर रखने का प्रयास करें, या जानबूझ के वहां ना जाएं, पहला। दूसरा है ग्रेविटी इन थॉट्स, विचारों में बहुत गंभीरता रखें, हम अपनी गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास करें। गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि मुंह लटका के खड़े हो जाना, कई बार लोग गंभीरता से मैं किसी से नहीं बोलूंगा, ये गंभीरता नहीं है। गंभीरता का मतलब ये है कि आप अंदर से बहुत हमेशा जो है वो बिल्कुल गंभीर हो कि मुझे क्या करना है, बाहर से आप कैसे भी कर रहे हो दिखा रहे हो अलग बात है, पर हमें अंदर से बहुत गंभीर होना चाहिए मुझे क्या क्या करना है। फिर तीसरा है डाइवर्ट द माइंड टू द वैदिक लिटरेचर, हमेशा माइंड को वैदिक लिटरेचर पुराणों की और उसके जो है पुराणों की और वैदिक साहित्य को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, या पुराणों की कहानियां पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है। कई बार जो है हम फिलॉसफी को पढ़ नहीं पाते या उसमें हमें समस्याएं आती है, हमें बोरिंग लगता है, तो हम पुराणों की कहानियां पढ़ सकते हैं, उससे भी हमारा मन शुद्ध होता है। चौथा है कि हमें दूसरों के बारे में कभी सोचना चाहिए कि उसका कल्याण किससे होगा, या इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, इन दूसरे लोगों का कल्याण किससे होगा, इससे भी हमारा मन जो है वो पवित्र होता है। फिर दोगलापन से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम दोगलापन जो है वो उससे दूर रहने का प्रयास करें, हम जो अंदर हैं वही बाहर दिखने चाहिए। तीसरा है नेक्स्ट है डिटैच द माइंड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब विषय इंद्रिय वस्तु से जो है इंद्रिय विषय वस्तु से माइंड को जो है वो दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अपने डीलिंग्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बोलना चाहिए कि प्रभु जी मेरे से होगा नहीं होगा, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैं देखता हूं, मैं करूंगा, मैं कर प्रयास करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये भक्तों के लिए शब्द नहीं है, भक्तों का जो डीलिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो सकता है नहीं हो सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर और छठा, इन चीज से सावधान रहना हमेशा कि माइंड हमेशा डिससेटिस्फाइड होने की तरफ जाता है, कि हम वो असंतुष्ट रहने का हमेशा प्रयास करेगा, इन चीजों से हमेशा सावधान रहना है कि मेरा माइंड कहीं डिससेटिस्फाइड तो नहीं हो रहा है, असंतुष्ट होने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। और इसके लिए भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवद गीता में एक श्लोक में कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि मन को हर लेती है, 60 श्लोक में, यद तो यपि कौंतेय पुरुषस्य अभिपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसवम् मनः। और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं उसी चैप्टर में 67 में, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु ऋणाम वामसी। इंद्रिय मन इतना प्रबल है कि इंद्रियों को हर लेती है, मतलब वाइस वर्षा, कहीं बता रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को हर के ले जाती है, और कहीं बता रहे हैं कि मन इतना चंचल होता है, प्रबल होता है कि इंद्रियों को हर लेती है। और आपने सबसे सुना होगा कि बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि आकर्षति, जो बलवान इंद्रियां हैं वो बड़े से बड़े विद्वान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, और बहुत भक्ति में प्रैक्टिस करने वाले लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, साधारण व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए, और इसके ऊपर कथा भी आप सबने सुनी भी होगी कई बार, तो हमें इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम इन माइंड को जो है वो धीरे धीरे इंद्रिय विषय वस्तु से अलग रहने का, दूर रखने का प्रयास करें, यही एक तरीका है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गीता गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।